मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 11 मई 2018 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस afeis.com के लाइव मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, दो दिन का स्वागत एडवांस में ही करता हूं क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि आज शुक्रवार है, यानी कि शनिवार और रविवार को मैं आप लोगों की सेवा में उपस्थित नहीं हो सकूंगा, इसलिए उन दो दिनों की भरपाई के लिए मैं पहले से ही दो बार आप सबका और स्वागत कर लेता हूं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जहां तक लाइफ मैनेजमेंट के विषय का सवाल है, जैसा कि मैंने कहा था कि कल के ही विषय को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा और कल हम लोग जीवन के उत्सव पर बात कर रहे थे और उसके लिए आधार बनाया था अभी अभी आई एक बड़ी खूबसूरत प्यारी सी फिल्म 102 नॉट आउट को। कल मैंने आप सबसे कहा था कि यदि संभव हो सके तो आप सब फिल्में देख लीजिएगा। पता नहीं आप लोगों ने वो फिल्म देखी या नहीं देखी, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि सभी के लिए देख पाना संभव नहीं होता और सभी जगह ये फिल्म उपलब्ध भी नहीं है। मित्र, कोई बात नहीं, अगर आपने फिल्म नहीं भी देखी है तो भी काम चलाने की कोशिश करते हैं, बात को बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा और वो ये कि कोई बात नहीं, आप फिल्म अभी न सही लेकिन बाद में देखिएगा, जरूर एक बार जरूर फिल्म देखिएगा। और उसके साथ बस एक काम और कर लीजिए कि कल का जो मेरा एपिसोड था और आज का जो ये एपिसोड है, इसे आप कहीं अलग से सुरक्षित रख लीजिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि ताकि जब आप फिल्म देख लें तो फिर इन दोनों के साथ 20-22 मिनट गुजारें, तब आपके लिए गुजारना आसान होगा क्योंकि आपने इसे काट कर चुन कर अलग से रख लिया है, अदरवाइज आपके लिए ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और फिर आप अब जो मैं बातें कह रहा हूं उनको समझने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। और मजा क्या आएगा, हम कोई एंटरटेनमेंट चैनल की बात नहीं कर रहे हैं अपन लोग। मित्रों, अपन लोग तो जीवन की बातें करते हैं ताकि जीवन में कुछ हम सकारात्मक बदलाव ला सकें, कुछ बेहतरी की तरफ बढ़ सकें। तो आप पाएंगे कि फिल्म देखने के बाद जब आप इसे सुनेंगे तो डेफिनेटली आप पर प्रभाव बिल्कुल विपरीत होगा। और जब प्रभाव होता है तो देखिए तभी हम उसे अपने काम में लाते हैं, उसे उपयोग में लाते हैं, उसमें प्रैक्टिकल करते हैं, एक्शन करते हैं। तो आइए अब मैं फिल्म पर बात करता हूं और इसीलिए मैंने आज शीर्षक दिया है जीवन में बदलाव। जीवन में ठीक है उत्सव एक बात है, लेकिन मान करके चलिए कि यह उत्सव जबरदस्ती की चीज नहीं होती है कि आप कहते रहे कि नहीं नहीं मैं तो जीवन का उत्सव मना ही रहा हूं। नो, जीवन का उत्सव तो झलकता है, सामने वाले को दिखाई देता है कि यार ये आदमी कितना खुश है, ये आदमी कितना मजेदार है, जिसे हम कहते हैं ये आदमी सच में कितना जिंदा दिल है। तो ये नहीं कि आप कह रहे हैं तो जीवन का उत्सव है, नो, वो दिखाई दे रहा है तो जीवन का उत्सव है। तो मित्रों, ये दिखाई देगा कैसे, उसके पीछे कुछ न कुछ हमें तपस्या करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है, यूं कह लीजिए कि हमें एक्शन में आना पड़ता है। देखिए इसमें 102 नॉट आउट दिया, 102 नॉट आउट, इसका मतलब यह हुआ नॉट आउट में ही अपना उत्सव का है, 102 हो गए हैं लेकिन अभी और जीना है, अभी आउट नहीं हुए हैं, मतलब उसमें भी आपको एक उल्लास की ध्वनि सुनाई पड़ती होगी। खैर, यहां जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है 102 नॉट आउट के पीछे कि सामान्यतया कहा जाता है कि व्यक्ति 60-65 साल के बाद एक प्रकार से सरेंडर कर देता है कि ठीक है यार अब बहुत जी लिए, जो कुछ करना था वो कर भी लिए, अब जो बचा हुआ है वो ऐसे ही कट जाएगी। 102 नॉट आउट इसी के खिलाफ है कि नहीं, कट नहीं जाएगी, अभी भी जो है आपके हाथ में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें एक बड़ा खूबसूरत डायलॉग है कि हां मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि मैं अभी तक मरा नहीं हूं। उस डायलॉग की संवेदनशीलता को महसूस करने की कोशिश कीजिएगा कि जब तक मैं नहीं मरता हूं तब तक मैं जीवित ही हूं, और जीवित अगर हूं तो मुझे अपनी जिंदा दिली का प्रमाण देना है, केवल सांस चलना ही जिंदा रहने का प्रमाण नहीं है। वो यही नई फिलॉसफी एस्टेब्लिश करना चाह रहा है जो भारत की फिलॉसफी रही है, कोई नई बात नहीं है, कहने का अंदाज बिल्कुल नया है। तो जब 60-65 तक हम जीवन की एक पद्धति को जी चुके हैं तो अब लगता है कि यार अब तो ठीक है कट जाएगी, तो बट नेचुरल कि हम सरेंडर कर चुके हैं, सरेंडर कर देते हैं और इसके बाद जीवन में नया करने के लिए कुछ रही नहीं जाता है। ये फिल्म क्या कहती है, ये फिल्म कहती है कि नहीं, अब जो आपका 60-65-70 और फिल्म के हिसाब से कहे तो जो 75 साल का दौर है, अब आप उससे मुक्त होइए, उससे छुटकारा पाइए, कैसे छुटकारा पाए। फिल्म ये बात कहां पर कहती है? तो आप देखेंगे कि जो ऋषि कपूर है, जो राज अमिताभ बच्चन के जो बेटे बने हैं, 75 साल के वृद्ध हैं, वो अपने साथ एक चद्दर रखते हैं और वो चद्दर उनकी बचपन की चद्दर है जिसके से उनका बहुत ही अटैचमेंट हो गया है और उसे लेकर के सोते हैं। बिना उस चद्दर के उनको नींद नहीं आती है। और जो शर्त रखते हैं अमिताभ बच्चन, कई जो शर्तें, चार पांच सात छह शर्तें रखी, उसमें से एक शर्त यह भी है कि तुमको ये चद्दर फेंकनी पड़ेगी, और वो उसको फेंकने को तैयार नहीं होते हैं। सामान्य रूप में आपको लगेगा यार ये चद्दर है, उठा करके फेंक दो, इसमें क्या बात है, लेकिन वो वहां वो एक सिंबॉलिक है। वो चद्दर फेंकनी नहीं, आप देखेंगे कि उसमें वो तीन बतख के छेद करवाते हैं कि चद्दर में छेद करने हैं और बतख की तरह तीन छेद करने हैं, बतख की तरह तीन छेद। ये जो छेद हैं ये नई हवा के लिए है, नई रोशनी के लिए है कि अब इस अतीत में से 60-65-75 साल की जो जिंदगी बीत चुकी है, अब इसको छेदने की जरूरत है, इसको भेदने की जरूरत है, तभी तो नई रोशनी आ सकेगी और इसी छेद से बाहर की दुनिया दिखाई दे सकेगी। इस अतीत को छोड़िए, फेंकिए, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं फेंकेंगे और इसे चिपके रहेंगे तो नए की संभावना शून्य रहेगी। इससे मुक्त होइए और मुक्त होकर के और फिर अतीत से छुटकारा पाकर के और फिर जीवन की रियलिटी में आइए। जीवन का जो यथार्थ है उस यथार्थ को स्वीकार कीजिए और उस यथार्थ को स्वीकार करने के लिए और अतीत से मुक्ति पाने के लिए जो सबसे बड़ी बात कही गई है फ्रेंड्स, वो ये है कि आपको एक्शन में आना होगा। अपने आप कुछ नहीं होने वाला है कि हो जाएगा। You have to be active. आपको सक्रिय होना पड़ेगा और आप देखते हैं कि उन शर्तों के माध्यम से अमिताभ बच्चन अपने ऋषि कपूर नाम के बेटे को, जिसका नाम बाबू है उसमें, वो सक्रिय करते हैं। जो शर्तें उन्होंने रखी हैं, बेसिकली वो सारी की सारी शर्तें उनको अपने घर के कैद खाने से निकाल कर और बाहर की दुनिया में ले जाने की शर्तें हैं। उनके अंदर जो एक बहुत ही निराशा का भाव घर कर गया है, और बकायदे उसके रीजंस भी बताते हैं, उन निराशा के भावों को निकालकर बाहर फेंकने की शर्तें हैं। और देख, शर्तें बड़ी छोटी सी लगती हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करने की शर्तें हैं। वो कहते हैं गमला लगाया जाता है और कहते हैं कि इसमें 11 दिन में फूल आ जाना चाहिए। तो उनका जो एक साथ देने वाला है, जो सपोर्ट करता है, अमिताभ बच्चन के घर पे ही रहता है, जो पार्ट टाइम में काम कर रहा है, वो बाद में जब ऋषि कपूर चले जाए, ऋषि कपूर बड़ी उम्मीद के साथ उस गमले में उस फूल को लगाते हैं और उसको भरोसा है कि 11 दिन में इसमें फूल आ जाएंगे। और वो जो साथ में लड़का है वो कहता है आ ही नहीं सकते, 11 दिन में कैसे फूल आ जाएंगे। और फिर जब अमिताभ बच्चन से इस लड़के की बात होती है तो अमिताभ बच्चन बताता है कि मैं जानता हूं कि 11 दिन में फूल नहीं आ सकते, लेकिन इसमें आएंगे। और एक फूल आए हुए गमले को ला करके रख देते हैं, बोले रिप्लेस कर दो पहले वाले गमले को, ताकि उसको यह भरोसा हो कि नहीं, मैं फूल पैदा कर सकता हूं, मेरे हाथों में भी वो हुनर है कि गमलों में फूल आ सकते हैं। तो उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा करना चाह रहे हैं और उस कॉन्फिडेंस को पैदा करने के लिए वो ये सारा का सारा प्रपंच रचते हैं, ये माया जाल खड़ा करते हैं। और आखिरी में देखते हैं कि उनका बेटा जब विदेश यात्रा से लौट कर आता है तो एयरपोर्ट पर जब ऋषि कपूर रिसीव करने जाता है और वहीं से उसको वापस भेज देता है, बोले तुम्हारी संपत्ति केवल ये गुल्लक है, उठा करके गुल्लक को फोड़ देता है और कहता है गो बैक, घर भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लड़का विदेश चला गया था और विदेशी में ही रहता है, शादी अपनी पसंद से कर ली, घर कभी लौट करके नहीं आया, मां की मृत्यु हो गई तब भी नहीं आया, मां याद करते करते मर गई तब भी वो नहीं लौटा, और अब वो संपत्ति चाहता है कि मुझे मिल जाए, उसके लिए वो लौट रहा है और इस रियलिटी को एक्सेप्ट करता है। इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना उसके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि बट नेचुरल है कि बेटे के प्रति जो मोह होता है वो इमोशनल लेवल का होता है, वो इमोशन उसको रियलिटी को देखने ही नहीं दे रहा था। तो इसके माध्यम से जो अमिताभ बच्चन कह रहे हैं वो ये है कि जब तक आप इस इमोशंस को हटाएंगे नहीं, थोते इमोशंस को, तब तक रियलिटी दिखाई नहीं देगी। और याद रखिए कि अमिताभ अतीत के साथ यथार्थ का और वर्तमान का सामंजस्य बिठाने की बात करते हैं, वो अतीत से एकदम मुक्त हो जाने की बात नहीं करते हैं। याद रखिए, एक बड़ा खूबसूरत डायलॉग है कि जब बेटा निकम्मा हो जाए तो बेटे को भूलने की जरूरत नहीं है, केवल आप उसके बचपन को याद कीजिए, बस क्योंकि बचपन में तो बेटा बड़ा सीधा सरल सहज था, बड़ा प्रेम करता था और आप भी उससे प्रेम करते थे। उसके बचपन को याद कीजिए, यानी कि वो अतीत से मुक्त होने की बात नहीं कर रहा, अतीत के यथार्थ को स्वीकार करने की बात कर रहा है। इसीलिए आप देखिए कोई एक शर्त उसकी यही रहती है कि वो दिन भर सिटी बस में बैठ करके बॉम्बे के और कुछ पर्टिकुलर जगहों पर वो जाएगा, और ऋषि कपूर उन पर्टिकुलर जगहों पर जाता है और अपने अतीत को याद करता है। अतीत के याद के माध्यम से वो उनके ऋषि कपूर के अंदर इमोशंस पैदा करना चाह रहा है। इसका मतलब है कि वो इमोशन का विरोधी नहीं है, याद रखिए कि आपको एकदम इमोशन लेस हो जाने की बात कर रहा है या अतीत को बिल्कुल खत्म करने की बात कर रहा है, नॉट एट ऑल। हम अपने अतीत को कैसे खत्म कैसे कर सकते हैं, लेकिन उसे यथार्थ के रूप में स्वीकार करने की बात कर रहा है। मित्रों बहुत खूबसूरत फिल्म है, मैंने थोड़ी सी व्याख्या की है, अगर आपने फिल्म देखी होगी तो मेरी व्याख्या शायद आपको ज्यादा समझ में आई होगी, और नहीं भी देखी हो तो कोई बात नहीं, मेरी इतनी अर्ज आप सुन लीजिए, मान लीजिए कि आप इन दोनों एपिसोड को अपने पास अलग से रख लें और जब आप ये फिल्म देख लें तब फिर आप इन्हें सुने, आपको खूब मजा आएगा। हो सकता है कि आप अपने लिए कोई खूबसूरत सी चीज इसमें से निकाल भी लें। तो दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के लाइफ मैनेजमेंट को यहीं समाप्त करना चाहूंगा और साथ ही आप सब मित्रों से दो दिन के लिए विदा भी चाहूंगा। मेरा अभिवादन स्वीकार करें, नमस्कार।